نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. محسن انسانیت, اس میں سے ہم غزوہ خندق شروع کر چکے. موٹی موٹی باتیں جو جنگ کے حقائق سے متعلق تھیں وہ بھی دیکھ لیں. آج ہم بہت ہی خوبصورت ٹاپک کرنے لگے ہیں, اور وہ ٹاپک کیا ہے؟ غزوہ خندق کے اہم نکات. آپ میں سے جن لوگوں نے غزوہ خندق کے بارے میں کچھ نہیں سنا پڑا, قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں بڑی ڈیٹیل سے اس کے بارے میں پڑھیں گے اور پڑھتے بھی ہیں. اس وقت صرف آج کے حساب سے اتنا بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ یہ سوچ لے کر آئے تھے کہ ٹھیک ہے, ہم راستہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں تنگ نہ کریں, ہم ان کو تنگ نہ کریں. لیکن مکہ سے مدینہ آنے کے بعد بھی آپ کو نہیں چھوڑا گیا, بلکہ یہاں تو چو مکھی جنگ شروع ہو گئی. مکہ میں تو صرف مشرکین مکہ ہی, وہاں کے لوکل لوگ ہی آپ کو ظلم و ستم کی چکی میں پسنے پہ مجبور کر رہے تھے, صحابہ کرام کو اور آپ کو. لیکن مدینہ میں آنے کے بعد نہ صرف یہ کہ وہاں کے لوکل لوگ, پھر یہود مدینہ, پھر ارد گرد کے کچھ لوگ تھے, کچھ وہاں نفاق بھی شامل ہو گیا. تو یہاں اللہ کے نبی کے لیے بہت بڑے چیلنجز تھے. آپ کے میرے لیے زندگی کا ایک سبق ہے اس میں کہ بعض دفعہ آپ آسانیوں کی تلاش میں کہیں جاتے ہیں اور وہاں مشکلات آتی ہیں, پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ اس سے پہلے میں کتنی آسانیوں میں تھی. یاد رکھیے کہ زندگی میں جو نعمتیں آج موجود ہیں اس کی قدر کیجیے. آپ کا میرا صرف آج ہے, ٹوڈے. آج کے رشتوں کو انجوائے کیجیے, آج کے دن کو انجوائے کیجیے, آج کی سردی کو انجوائے کیجیے, آج کی برف کو انجوائے کیجیے. اگر آپ نے آج کو انجوائے نہ کیا تو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہیں گے, کیونکہ ہر بندے کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مواقع ہوتے ہیں. خیر, قصہ مختصر, ابھی ایک سال بھی نہیں گزرا, تقریباً ایک سال, تو غزوہ بدر ہوئی. بڑی ہی ان ایکسپیکٹڈ جنگ تھی. اللہ نے ہمیشہ کی طرح ایمان والوں کا ساتھ دیا اور امید سے زیادہ مدد کی, اور من حیث لا یحتسب کے وعدے پہ عمل کرتے ہوئے کہ وہاں سے مدد دوں گا جہاں سے تم سوچتے بھی نہیں ہو. 313 کے مقابلے میں 1000 بڑے کامیاب ہو گئے, الحمدللہ. دھاک بیٹھ گئی, سر کچل گیا کفر کا, بہت ہی ان کو غصہ بھی آیا, یہ کیا ہو گیا, یہ ہوا, چلو کوئی بات نہیں, اگلے سال پھر آئیں گے. دھمکی دے کر چلے گئے. اپنی دھمکی کے مطابق اگلے سال پھر ایک مقابلہ ہوا جس کو احد کے نام سے جانتے ہیں. حالانکہ 1/3 آف دا گروپ جو تھا اس نے اینڈ ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ بھی دیا. عبداللہ بن ابی جیسا چرب زبان اور میٹھی بولی بولنے والا شخص, جس کے دل میں اللہ کے نبی سے اور اللہ سے پیار نہیں تھا لیکن اوپر سے دین کا غلوبادہ تھا, اپنے ساتھ 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا. بہت بڑا خطرہ تھا اس وقت مسلمانوں کے لیے کہ وہ بھی چھوڑ دیں, کیونکہ ایک چھوڑتا ہے تو دوسرے کا بھی چھوڑنے کو دل کرتا ہے. لیکن جب مضبوط لیڈرشپ ہوتی ہے, مقصد سے پیار ہوتا ہے, مقصد پہ نظر ہوتی ہے, تو پھر ایسی باتیں بہت ہی بیکار اور بچگانا سی لگتی ہیں. خیر, اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مدد کی, ایک سبق سکھانے کے لیے صرف, کہ دیکھو تمہاری ساری مدد جو اللہ کی طرف سے آنی ہے نا, وہ رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ صحابہ کرام کی یہ بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ فتح اور شکست کو اپنے ذاتی اسباب سے نہیں جوڑتے تھے کہ آج میری بہت اچھی تیاری ہے تو آج کھانا بڑا اچھا پکے گا, آج میں نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہیں, موٹے پہنے ہیں تو مجھے ٹھنڈ نہیں لگے گی. نہیں, ان کی نظریں تھیں اطاعت رسول پہ. یعنی جتنا ٹرسٹ ہم سردی میں موٹی جیکٹ پہ کرتے ہیں اور برف والے جوتوں پہ کرتے ہیں کہ میں نے اچھے جوتے پہنے ہیں, میں نہیں پھسلوں گی, اس سے زیادہ صحابہ کا ایمان تھا کہ آج میں نے نبی کی بات مانی ہے تو مجھے آج کچھ نہیں ہوگا. اور اس کی مثال ہے کہ تاریخ میں ایک واقعہ ایسا بھی گزرا کہ مسلمانوں کو خلاف معمول شکست ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 10 سال کا مدنی دور ہے, سوائے احد میں وقتی بھگدڑ مچنے کے کسی جنگ میں بھی مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی. اسلام کی سچائی ہے, کیونکہ حق آتا ہے تو باطل جاتا ہے, اور نبی کبھی کسی عام امتیوں کے سامنے ہار جائے یہ تو بات ہی نہیں ہوتی. لیکن اللہ نے سبق سکھانا تھا اور مسلمانوں کے عقیدے پختہ کرنے تھے کہ باوجود اس کے کہ نبی ساتھ ہے, باوجود اس کے کہ تم لوگ بڑے درد مندی سے کام کر رہے ہو, لیکن وقتی طور پہ نبی کی بات بھول گئے, ڈسپلن کو نہیں فالو کیا, رولز اینڈ ریگولیشن بھول گئے, اور وہ جگہ چھوڑ دی جہاں سے نہیں چھوڑنی تھی. سمجھنے لگے جنگ ختم ہو گئی ہے, لیکن وہ جنگ ختم نہیں ہوئی تھی. دشمن نے جگہ خالی دیکھ کر واپس پیچھے سے حملہ کیا اور بھگدڑ مچی, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا. آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی. مصعب بن عمیر کی شہادت کی صورت میں और इसी तरह 70 सहाबा कराम जो थे शहीद हो गए। ये एक बहुत बड़ा कह लीजिए कि चरखा था जो उस वक्त इस्लाम की कमर में घुसा, क्योंकि इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इतने थोड़े लोगों में से भी 70 चुने हुए लोग चले गए, जिसमें आपके अपने चचा हज़रत हमज़ा भी मौजूद थे। लेकिन जिनकी नज़र मकसद पे होती है, काम पे होती है, शिकस्त या हार या नाकामी उनको पीछे नहीं डालती। सेल्फ मोटिवेटेड होना, ये है असल में ईमान का दूसरा नाम। ईमान की एनर्जी होगी, फतह हो तो खुशी तो बहुत होती है। हाँ, आज काम बहुत अच्छा रहा, आज दर्स बड़ा अच्छा रहा, आज की क्लास में बहुत आराम से बैठी। लेकिन अगर सर में दर्द है, तकलीफ़ है, गर्मी है, सर्दी है, कुछ भी नहीं, शुक्र है क्लास में तो मौजूद हूँ। यानी फतह और शिकस्त से बेनियाज होकर इंसान काम करता है। बहरहाल एंड पे मैच ड्रॉ हो गया, यानी ना फतह हुई ना शिकस्त हुई। जो फ़ायदा मक्का वाले उठा सकते थे वो नहीं उठा सके। किस्सा मुख्तसर, बदर और ओहद के बाद बीच में चंद और भी जंगें हुई। इस वक्त जिस पे आपको लेके जाऊंगी वो खंदक है। नबी सल्लम को हिजरत करके आए हुए तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। मक्का वालों ने एक प्लान किया कि चलो ऐसा करते हैं, हम अकेले जाते हैं तो मोहम्मद का मुकाबला कर नहीं पा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका ख्याल था कि हम थोड़े हैं, हालांकि याद रखे कि मोमिन है तो बेतेक भी लड़ता है सिपाही, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। एक साजिश क्या की कि हम सारे मिल जाते हैं, गली गली, घर घर, कबीला कबीला जाकर, अबू सुफियान भी और इधर से पीछे से शेह अब्दुल्ला बिन उबई की थी, इन्होंने जाके बात की, क्या ख्याल है अगर तुम साथ दो तो हम मिल के एक ही दफ़ा ना हमला कर दें मुसलमानों पे। अच्छा हाँ, वाकई तंग तो हम भी हैं इनसे, चलो अच्छा ठीक है, एग्रीमेंट किया। इधर गए, क्या ख्याल है सारे मिल के ना इनके खिलाफ हो। इस तरह पूरे अरब के अंदर जंग की आग भड़का दी। और उनको ये था कि अकेले मोहम्मद सल्लम इतनी छोटी सी जमात के साथ करेंगे क्या, और वाकई इट्स अन अचीवेबल टारगेट। आज ऐसे ही है जैसे एक छोटे से मुस्लिम मुल्क के लिए सारी सुपर पावर्स जमा हो जाएं। आज भी वही कहानी है। हर किस्सा मुख्तसर, खबर नबी सल्लम तक पहुंच गई। एक चॉइस क्या थी कि आप फौरन तौबा हो, सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दें, वी बैग, और हमें आपकी एड चाहिए और मदद, जो कहेंगे वी विल लिसन टू यू। नहीं, आज हम मुसलमान, वी लिक द बूट दैट किक्स अस, हम वही जूते चाटते हैं जो हमें ठुड्डे मारते हैं। अल्लाह के नबी ऐसे नहीं थे। आपके मिजाज में एक लीडरशिप क्या थी, क्या आप दुश्मन की आंखों में आंखें डालते थे? कहा अच्छा कोई बात नहीं, चैलेंज बड़ा है, हमारे लिए इम्पॉसिबल है लेकिन अल्लाह के लिए पॉसिबल है, करें क्या। एक सहाबी सुलेमान फारसी, जो फारस से थे, अरब भी नहीं थे, क्योंकि इस दीन में किसी की मीरास नहीं है, कोई किसी की मोनोपली नहीं है, उन्होंने मशवरा दिया कि अल्लाह के नबी फारस में हम दुश्मन का मुकाबला कैसे करते, अपने और दुश्मन के बीच में एक खंदक खोद देते हैं। खंदक समझते हैं, डिच, डिच होती है, खाइयाँ खोद देते हैं कि इतनी गहरी और इतनी चौड़ी कि दुश्मन उसको फलांग ना सके। और आपको पता है कि पहले दौर में शहर ना ऐसे फसीलों में लगे होते थे, जैसे लाहौर शहर में भी एक दीवारें हैं, दिल्ली में है, बड़े बड़े किले होते थे, तो मुसलमान अंदर होंगे और पीछे सारा पहाड़ी सिलसिला है, घर है, वहाँ से तो दुश्मन आ नहीं सकता, रह गया फ्रंट की एक पट्टी, तो उसके अंदर हम अपने और दुश्मन के बीच में एक खंदक होते हैं। अल्लाह के नबी को ये मशवरा बहुत पसंद आया। यहाँ से देखिए, आम शख्स भी कभी एक मशवरा लेकर अपना नाम लेता है। शायद आपने, मैंने कभी पूरी सीरत और तफसीर पढ़ते हुए सलमान फारसी के साथ कोई और भी चीज़ पढ़ी हो। इसलिए ज़िंदगी में अल्लाह से दुआ करें हमसे भी कोई ऐसा काम ले जो हमारी वजह पहचान बन जाए, कोई वजह पहचान बन जाए। इसलिए कि ज़िंदगी में जब दिल में सच्चाई होती है ना, अल्लाह नेकियों के मौके ले लेता है। मैं किसी का वाक्या सुन रही थी, कोई अपने सुना रहा था कि हमारे गांव में कोई एक अंकल जी थे, तो उन्होंने अपने लिए एक चीज़ रख ली कि एक खुला प्लॉट था उनका, तो उसमें हर हफ्ते एक बीज डालते थे। तो कोई पूछता था तो क्या, तो कहते थे कि इस पे कभी फल उगेंगे, तो लोग हंसते थे, लो आज आप बीज डाल रहे हैं तो दरख्त तो कई सालों में फल देते हैं। उन्होंने कहा ना से जो भी होगा, अपनी जवानी से उनका ये अमल था। एक वक्त आया कि वो एक एक दरख्त करके पूरा बाग बन गया। कई साल गुजर गए, उनके बच्चे फिर बच्चों के बच्चे हो गए। कहते हैं वो अंकल जो थे वो मशहूर हो गए बाग वाले अंकल। अब अंकल बूढ़े हैं और फल आ रहा है हर दरख्त पे, और हर साल वो सारे फल हर मौसम के अपने इर्द गिर्द वालों से शेयर करते हैं। ये नेकी कीजिए, मैंने आपने इस दुनिया में रहकर बीज डालने हैं, फल बाद वाले खाएंगे इंशाल्लाह, आपका मेरा हिस्सा डलेगा। तो कहने की बात यह है कि वो तरीका इख्तियार किया, अल्लाह ने वो मुसलमानों की मदद की, वो हालात जो थे। अब इंशाल्लाह हम वाक़यात की सूरत में पढ़ेंगे। ये आपको बता दूं जो आपके मेरे लिए आने वाले दिनों में बहुत ही कारामद चीज़ होगी, यख सर्दी थी तबूक, यख गर्मी में हुई, जिसको आप कहें कि शदीद गर्मी में हुई, लू चल रही थी और खड़ी फसलें तैयार थीं, और खंदक यख सर्दियों में। पता क्या चला, دین کا کام ہر موسم میں ہر حالات میں، گرمی سردی سے بے نیاز، بیماری صحت سے بے نیاز، اتنی سی بات پہ گھر بیٹھ جائیں کہ سواری کوئی نہیں، سواریاں تو بڑی کھڑی ہیں باہر، پیسے لگیں گے کوئی بات نہیں، دینے کس نے وہی دے دے گا. یاد رکھیے گا، جس وقت آپ ایک دو دن اس چیز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اللہ آگے نہیں لیتا. کسی بڑے کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کسی مشکل میں پھنسے ہو نا، روزے شروع کر دو، اللہ میں نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے کام نہیں ہوتا. اب یہ ان کا اپنا مشاہدہ تھا، کیا تھا، اللہ نوز دیوا کہتے تھے میرا ایمان ہے اللہ تین سے زیادہ روزے نہیں رکھاتا، تمہارا کام کرا دیتا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تو بہرحال مسلمانوں کو اتنی زبردست فتح ہوئی. اب ہم واقعات پڑھیں گے اور اس میں سے عمل کی باتیں، اور آپ خود دیکھیں گے کہ کیا ان کے جذبے تھے اور کیا ان کے اندر والنٹیئر اسپرٹ تھی، کیا وہ رضا کارانہ طریقے پہ کرتے تھے عمل. اور یہی تو اصل میں ہماری ہسٹری ہے. اصل میں ہم مسلمان آج اس سے دور ہیں. ہم سہل پسند ہو گئے، آرام کوش ہو گئے، ریلیکسڈ ہو گئے، لیزی ہو گئے، اتنے ایفس اینڈ بٹس میں پڑھتے ہیں کہ کوئی نیکی کا موقع چھین کے وہ آگے لے جاتا ہے ہم سے، اور ہم بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم نے ابھی یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زندگی میں ان خندقوں کو ڈھونڈیں. دیکھیے، شروع کرنے سے پہلے کتاب سے اب ہم پڑھیں گے، لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، اللہ نہ کرے کہ اب آپ کی میری زندگی میں کوئی جنگیں آئیں. کفر اور اسلام کی جنگیں بہت ساری گزر گئیں، آگے بھی آنی ہیں، ہمیں اللہ اس سے بچا دے. میں نے اپنے ابھی تلوار اور تیر نہیں اٹھانے، یہ وہ وقت نہیں ہے ابھی. لیکن اصل بات جو ہے کہ ہم نے کیا چیز کرنی ہے، ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے. ہم نے وہ نسلیں تیار کرنی ہیں جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی. تو انشاءاللہ اس کے اندر جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوئی، مجھے لگا کہ آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آئی، تو میں اس کو ساتھ لوں گی اور آپ اور میں اپنے لیے اب سبق لیتے ہیں. یعنی بالکل آپ اپنے اوپر ایک سوال لکھیں، پھر اس بات کو شروع کریں. اگر میں اس موسم میں ہوتی، اگر خندق کے موقع پہ میں وہاں موجود ہوتی، تو میرا طرز عمل کیا ہوتا. ٹھیک ہے، آئیے پڑھتے ہیں غزوہ خندق کے اہم نکات. اس غزوے کے سبق آموز واقعات پر ایک نگاہ ڈال لیجئے. نمبر ایک، پوائنٹس میں تو آپ بھی اس میں سے عمل پوائنٹس میں لے سکتے ہیں. پہلا نقطہ کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر ایمان پرور چیز مسلم رضاکاروں کا والہانہ طرز عمل ہے. انہوں نے نہ صرف اتنے خوفناک حالات میں بحثیت مجموعی صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا، بلکہ خندق کی کھدائی کا کام اس طرح کیا جیسے کہ جنات کی کوئی فوج زمین کا تختہ الٹ دے. یہ لوگ نغمے گا گا کر اور شعر پڑھ کر جوک در جوک کام کرتے دکھائی دیتے ہیں. کوئی ٹولی الاپتی ہے، نحن الذین بایعوا محمدن علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاحیات جہاد کرنے کا عہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر باندھا. کسی دوسرے گروہ کی صدا گونجتی ہے، ان لو لقد بغوا علینا اذا ارادوا فتنۃ ابینا. دشمن ہم پر چڑھ دوڑے ہیں، یہ لوگ ہمیں راہ حق سے روکتے ہیں اور ہمیں رکنے سے سخت انکار ہے. پھر ابینا ابینا کی جب تکرار ہوتی تو فضا میں جذبہ عظیمت کی لہریں اٹھ جاتی. اس والہانہ جذبے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کا حاصل عمر خطرے میں تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آج تک جو کچھ حاصل کیا تھا وہ تو خطرے میں تھا. اگر اس وقت مسلمان ڈھیلے ہوتے، سب کی کرائی پہ پانی پڑ جاتا. کہہ لیجئے کہ 13 اور 5 18 سال کی محنت اللہ کے نبی کی ویسٹ ہو جاتی. اور اس اسلامی تحریک اور مدینہ کی ریاست ان کے لیے ایک محبوب کی حیثیت رکھتی تھی، جس کے قدموں پر وہ ساری متاع حیات نچھاور کر دینا سعادت سمجھتے تھے. انسانی فلاح کا مقدس مشن ان کے لیے ایک جنون آموز دلبر تھا. لیکن اس کی دوسری وجہ اور بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا محبوب لیڈر کون تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے درمیان میدان عمل میں نہ صرف موجود تھے، بلکہ بنفس نفیس کام میں شریک. جو ہی کھدائی کا کام شروع ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے منتقل ہو کر موقع پر آگے، اور ایک ملحقہ پہاڑی پر آپ کا خیمہ نصب ہو گیا. کیا پتہ چلا کہ جنگ میں آپ شریک ہوتے تھے، لیکن پھر بھی آپ باقی فوج سے ایک اپوائنٹڈ جگہ پہ الگ ہوتے تھے. آج اس مقام پر مسجد زباب جلوہ گھر ہے. نوٹ کر سکتے ہیں آپ یہ پوائنٹ کہ مسجد زباب کدھر ہے؟ جہاں اللہ کے نبی کا قیام تھا غزوہ خندق کے دوران. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 10 افراد کی ایک ٹولی کے رکن تھے. مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی چونکہ دوسروں سے 10 گنا کام کرتے تھے، لہٰذا ہر ٹولی ان کو اپنی طرف کھینچتی تھی کہ ہمارے ساتھ دوں گے تو ہمارا ٹارگیٹ اچیو ہوگا. اور پیچھے پڑا ہے نا، ہر گروہ کے حصے کتنی خندق آئی تھی، 18 کیوبک فٹ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اتنی اتنی جگہ ایک ایک بندے کے حصے آئی تھی. तो जिसके साथ वो होंगे जो ज़्यादा काम करते हैं तो ज़ाहिर है वो टारगेट ज़्यादा हासिल करेंगे। यहाँ से काम करने का तरीका भी सीखिए, जब चीज़ को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया जाता है ना तो सबके लिए वो टारगेट अचीवेबल हो जाता है, आसान हो जाता है। खैर, इस कशमकश का फ़ैसला आपने ये फरमाया कि सुलेमान मिन्ना अहलुल बैत, यानी सुलेमान हमारे अहले बैत की टोली में है। इस तरह जनाब सुलेमान का एजाज़ भी हुआ और मुख्तलिफ टोलियों को एक दूसरे के मुकाबले पर रश करने का मौका भी न रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ मट्टी ढोई बल्कि कुदाल का काम भी किया, यानी ज़मीन को खोदा भी। बल्कि जब कोई सख्त चट्टान आ जाती तो आप खुद पहुंचते और कुदाल लेकर इसे अपने हाथों से तोड़ते। दो चट्टानों के तोड़ने का वाकया मशहूर है, आपने सूरत आल इमरान में पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे कि खंदक के दौरान एक ऐसी सख्त जगह आ गई कि जहाँ से किसी से भी वो पहाड़ी और वो चट्टान है वो टूट नहीं रही। कोशिशें कर ली, आखिर नबी सल्लम के पास लोग आए, कहा अल्लाह के नबी ये नहीं टूट रही, का पीछे हो जाओ। और आपने एक कुदाल मारी तो एक पत्थर टूट के ऊपर गया, फिर दूसरी मारी, आपने एक एक कुदाल पे कहा मुझे रोम की चाबियां दिखाई गई, मुझे फारस की चाबियां दिखाई गई, मुझे कैसरो किसरा के खजाने दिखाए गए। मुनाफिक खड़े जो थे वो मजाक उड़ा रहे थे, अच्छा जी कपड़े नहीं है जिस्म पे, पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं, जान बचाने के लिए घाटियां खोद रहे हैं और ख्वाब देख रहे हैं कैसरो किसरा के। यही मोमिन होता है। याद रखिए, मुश्किल हालात में ईमान वालों को फरिश्ते खुशखबरियां देते हैं, ततनज़्ज़ल अलैहिमुल मलाइका। आप अपने और मेरे ईमान का मुहासबा करना चाहते हैं ना तो किसी दुख और किसी तकलीफ़ के वक्त अपने दिल की कैफियत से कर सकते हैं। आज के बाद अल्लाह ना करे कोई तकलीफ़ आए, लेकिन आएंगी, मेरी ये दुआ कभी भी नहीं कबूल होगी, ना मेरे हक़ में ना आपके, क्योंकि वाला नबलुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफ वलजुई वनक़्स मिनल अमवाली वलअन्फुस वबशिरिस साबिरीन। मसाइबे खमसा हैं, मुसीबतें तो आएंगी, तकलीफ़ें तो आएंगी। अल्लाह सूरह तौबा में कहते हैं तुम देखते नहीं हो कि हर साल एक या दो बार हम तुम्हें आजमाते हैं, और आप भी देख लीजिए कोई ना कोई बड़ी आफत भी आती है, हमारे ख़ानदानी मसाइलों में भी आती हैं, कोई मरता भी है जीता भी है। तो अब इस एक पॉइंट से मुझे आपको क्या मिला, बहुत सारी बातें हैं। पहली बात याद रखिएगा, अपने लिए भी काम सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो उसके अंदर अपना जोश जज्बा दिखाए। ये जो पहले जुमले थे ना आज के इस लेसन के शुरू में ही, कि सहाबा का ये वॉलंटियरली इस काम को करना, या आपके अंदर एक ऐसी स्पिरिट है कि जिसमें भाग रहे हैं, जब तक ये नहीं होती काम नहीं होता। यानी सीधी सी बात है, रोते धोते करने तो ना करो, ये इसमें सबक है। सर्दी क्यों नहीं लगी उनको, इतना भारी काम, और शेर पढ़ रहे हैं जैसे वो मजदूर, ऐसे ऐसे काम कर रहे होते हैं, गाने गा रहे हैं, फिल्मी इंडियन सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वो उसमें मस्त हैं। साहबा को जान के लाले पड़े हुए हैं, दुश्मन आने वाला है, एक खास वक्त के अंदर करना है, और इंजॉय क्या कर रहे हैं, नहनुल्लज़ीन अबा याऊ मोहम्मदन, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की है, हमने तो आपसे इस चीज़ का वादा किया कि क्या मरते दम तक इस रस्ते में रहेंगे। ये मांगी है, ये मुझे भी मांगनी है। हम कुछ साल कुछ अरसा दीन के साथ जुड़ने के बाद ठंडे होने लगते हैं, शायद ये ख्याल होता है कि काफ़ी कुछ कर चुके हैं, दूसरी बात है यूज्ड टू हो गए, तीसरी बात है और भी तो कर लेने, कुछ और लोग भी तो आगे आ जाते हैं ना, हम उन पर रिलाय करते हैं। याद रखिए, आखिरी दम तक अगर आप अपना शौक ना ख़त्म करें, दूसरों का शौक कभी ख़त्म नहीं होगा। आप अगर एडमिन हैं, आप किसी कोर्स के जिम्मेदार हैं, आप उधर क्लास इंचार्ज हैं या कोर्स इंचार्ज हैं, आपका इंटरेस्ट, आपकी उसमें इनपुट, आपकी एक्टिविटीज़, आपका उसमें जहन खुलना, या आपके स्टूडेंट्स को भी खुलाएगा, और अपोजिट भी है। आप छुट्टी के हरीस तो दूसरे भी हरीस, आप जाना चाहते हैं आपसे पहले लोग जाएंगे, आप नहीं आना चाहते वो भी नहीं आएंगे, आप बात बे बात पे घर बैठेंगे वो भी बैठेंगे। और अपने लिए याद रखिए, जो स्टूडेंट्स हैं आप में से वो भी याद रखें कि आप भी दूसरों के ऊपर असर डालते हैं। याद रखिए, ज़िंदगी इधर ही रह जानी है, दुनिया इधर ही रह जाएगी। अगर आपको अपने मकसद से प्यार है तो आप कभी भी इधर से नहीं हटेंगे। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मिसाल अपनी पल्ले से बांध लीजिए, खुशी गम और मसरूफियत और सब कुछ, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है। आपका दिल अल्लाह की तरफ हो, वो कहते हैं ना कि हथ काम वल ते दिल दोस्त वल, अल्लाह से प्यार हो जाता है ना तो काम करते हुए भी दिल उधर ही लगा होता है। और यकीन कीजिए, अल्लाह नोज़ द बेस्ट, मुझे आपको नहीं पता कल क्या होगा। अगर आपको कल इस वक्त जहाज़ में होना हो, एक सवाल लिखिए, कल इस वक्त आप एक बहुत लॉन्ग फ्लाइट में जाने वाले हो, पाकिस्तान ही जाते हैं आप और किधर जाएंगे, कहीं और जाना है तो चले जाएं, कि आज आप इस वक्त क्लास में होते, इत्मीनान के साथ, पुरसुकून, पूरे इंजॉयमेंट के साथ, भाग दौड़ में कि क्या आपको नहीं पता तो किसको पूछूं जी। नहीं, अल्लाह नहीं लाता, देखिए आप ना आते तो अल्लाह कभी ना लाता। एक जंग ऐसी गुजरी है, इससे पहले की बात है, हज़रत यूशुफ बिन नून, बिलीव मी, मैं बताने लगी ना तो मेरे हाथ कांप रहे हैं। आपने सुना हुआ, फिर सुन लें, यूशुफ बिन नून का दौर था, जंग लगी हुई थी और बिल्कुल मुसलमान करीब थे कि जीत जाए, लेकिन सूरज ढलने लग गया। और उस दौर में जूं ही अंधेरा होता था फिर जंग ख़त्म होती थी, जैसे मैच, अभी आज का दिन ख़त्म, शेक हैंड गुड, कल फिर मिलते हैं। अगले दिन नए तैयारी हौसलों से लोग आते थे। अगर उस वक्त जंग रुक जाती ना तो मुसलमानों की जो बिल्कुल फतह के करीब की वक्त था वो ख़त्म होता, कल अगले दिन दुश्मन फिर आ जाता आगे। तो उस नबी ने दुआ की थी कि अल्लाह मैं भी तेरे हुक्म से हूँ, ये सूरज भी तेरा है, मैं भी तेरा बंदा हूँ, ये तेरा बंदा है, इसको रोक ले। अल्लाह ने सूरज रोक लिया था। और वो तो नबी थे, असहाब कहफ के लिए अल्लाह ने कैसे गार में एक इंक्यूबेटर बना दिया। याद रखिए, आप अपने मकसद से सच्चे हों, अल्लाह आपके लिए रास्ते बना देगा। फ्लाइट्स लेट हो जाती हैं, टाइम चेंज होता है। मैं 10 वाक्य तो अपने साथ भी सुना सकती हूँ जो मेरे साथ तक रिसेंटली हुए हैं, इन पिछले एक महीने के सब 4-5 मुल्कों में हम गए इस एक महीने में। इतने अजीब वाक्यात के बंदा हैरान हो जाता है। आप अल्लाह से मनवा लें, अल्लाह आपके लाड भी देखता है, अल्लाह आपकी मानता है, फिर अगर आप नहीं मानेंगे तो अल्लाह कहते जाओ फिर भुगतो। तो ये सहाबा के जज्बे देखिए। फिर आप देखिए इस हिस्से से जो मुझे एक चीज़ और समझ आई कि जब तक लीडर्स काम में साथ होते हैं फॉलोअर्स का भी दिल लगा रहता है, फितरी बात है। देखिए आप ये ना कहिए कि ये तो शख्सियत परस्ती है, फिर ये तो कब तक, ये कोई बच्चे हैं या बड़े हैं, लेकिन आप अपने घर पे देख लीजिए, माँ बाप साथ लग जाए तो बच्चे सारे काम शुरू हो जाएंगे। तो अम्मी अब्बा कह दें आप ये करें और ख़ुद सो जाएं तो वो उठ के पानी भी नहीं पियेंगे बच्चे। जिस हद तक खुद इन्वॉल्व हों उस तरह रहे। फिर इसी तरह से आप देखिए कि सलमान फारसी ने सिर्फ मशवरा नहीं दिया, साथ फिर जिस्मानी मदद भी की। कोई आसान थोड़ी है, आप देखिए यहाँ सड़कें बनती हैं, कई के साल महीने लग जाते हैं। अपने लिए दुआ करें, अल्लाह हमसे भी कोई ऐसा काम ले कि जो हमें हकीकत में तेरी नज़रों में सुरखरू कर दें। चलें दूसरे नुक्ते पे चलते हैं, बातें और भी बहुत सारी हैं लेकिन सोचें, 3-4 सेकंड सोचिए तो सही। बस अच्छा, आमतौर पर ऐसे वक्तों पे बातें शुरू हो जाती हैं, कुछ भी नहीं होना, इससे क्या होना है, ये नया ही तरीका ढूंढ लिया। चले आप जाकर सारों से जाके माफ़ी मांग लें, सारों को कहें नहीं 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 कुछ नहीं, उनकी चलो कुछ ले दे के मामला ख़त्म करें। सहाबा और नबी सल्लम में मुझे लगता है उनके खमीर में ये नहीं था कि कुफर के आगे दब जाना, बातिल के आगे कभी नहीं दबना चाहिए, वरना आपको लोग ऐसे मोम की नाक बना कर मरोड़ देंगे। आगे पढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट है, ये कहते हैं कि पहले जिक्र हुआ कि इस मौके पर किस दर्जे बेसरो सामानी थी, इसको हाईलाइट करें। जितनी जंगें लड़ी गईं बग़ैर तैयारियों के लड़ी गईं, खुदाई का सामान बनू कुरैज़ा से उधार लिया गया, औजार भी अपने नहीं। हम तो छुट्टी करके बैठ जाते हैं, हमारे पास तो औजार ही नहीं है, टूल्स ही नहीं है वहाँ पहुँचने के, वो काम नहीं होता, मेरा तो कलम टूटा हुआ, अब मैंने जाके क्या करना, लिख तो सकूँगी नहीं। नहीं, मट्टी ढोने के लिए टोकरियों तक का इंतज़ाम ना था। सोचें लोग अपने कपड़ों को इस काम में इस्तेमाल करते रहे, यानी वो जैसे झोली सी बना के ना कपड़े की, तो उसमें मिट्टी डालते फिर एक जगह से दूसरी जगह फेंकते। इसी के साथ साथ सामान खुराक की सख्त किल्लत थी। फिर चूंकि 3,000 मर्दाने कार कौन होते हैं, काम करने वाले मर्द, 2-3 हफ्ते खुदाई के काम में और फिर 2-3 हफ्ते महाजे जंग पर मसरूफ रहे और तमाम ज़रियो तिजारती कारोबार मुअत्तल रहे, इसलिए इक्तसादी बहरान नागुजीर था, यानी इकोनॉमिकली भी प्रॉब्लम थी। दिहाड़ीदार लोग थे बेचारे, कमाते थे और खा लेते थे। अब आप देखिए ना, तकरीबन कितने हफ्ते हुआ सारा कुछ काम, आप देखिए ना 3 हफ्ते पहले खुदाई हो रही थी, फिर उसके बाद मुसलमान जो थे वो जंग में मसरूफ रहे, तो तकरीबन आप कह लीजिए कि 1.5 से 2 माह लगे ना, तो काम ही नहीं था, तो घर में खाना पानी कोई नहीं। मुस्लिम सिपाहियों ने पसीना बहाते हुए 3-3 दिन के मुतवातर फाके काटे। नॉर्वे में एक रोज़ा कितना लंबा होता है मैक्सिमम? चले 22 जून को भी कभी रोज़ा आया होगा ना, सबसे लंबा 21 घंटे का, 3-3 दिन मुतवातर फाका। ये हालत भी खुशी खुशी से इसलिए काबिले बर्दाश्त हुई कि इस फाका कशी में जमात का सरबरा खुद हिस्सेदार था। ये बड़ों के लिए सारी पूछ है, छोटों ने बच जाना है। शौक़ हमें बड़ा होता है बड़े बनने का, याद है हम जब बच्चे थे तो कहते थे हम बड़े कब होंगे, अम्मी अबू की कितनी मौजें हैं, उनको स्कूल नहीं जाना पड़ता। तो आप पता लगा बड़े होके कि अम्मी अबू को नहीं जाना पड़ता, पर उनको चार को छोड़ने तो जाना पड़ता और लेने तो जाना पड़ता। बड़ा शौक होता है बंदे को बड़ा बनने का, लेकिन वल्ला ही आगे से ड्राइवर रास्ता भूल जाए तो सारी बस का रास्ता पलट जाता है। बल्कि इसने भूख की तकलीफ में से ज्यादा हासिल किया। दूसरे लोगों ने अगर आकर बयान किया कि इनके पिचके हुए पेटों पर पत्थर बंधे हुए हैं, तो नबी सल्लम ने कपड़ा उठाकर दिखाया कि यहां तो दो दो पत्थर बांधने की नौबत आ गई। दो दो पत्थर आज तक कभी बांधे? आज इस पत्थर को आप लिखिए पेट समेटने वाली बेल्टें, क्या बोलते हैं उनको, ट्रेनर्स और बॉडी फिटर्स, और कमर पतली करें बाहर भरा हुआ पेट अंदर करें। हम तो पेट दबाते हैं अंदर के, किसी तरह से ही अंदर चला जाए। उनके पेट अंदर से खाना मांगते थे तो अंदर जो नहीं कुछ, तो बाहर से कुछ फील कराते थे कि है तेरे अंदर कुछ। ईसार और कुर्बानी की ये सिफत जब भी कायम रहती है, इसको हाईलाइट करें, ईसार और कुर्बानी की ये सिफत जब भी कायम रहती है जबकि सारी जमात इसमें हिस्सेदार हो, ये नोट करें। थोड़े से लोग ढीले होते हैं ना, बाकियों का भी डीमोटिवेशन शुरू हो जाता है, पक्की बात है। आप देखिए फ्रीजर में खाना रखेंगे ना, सारा जम जाएगा, ठंडा होगा एकदम, पत्थर सब एक जैसा होगा। आप कोई एक पिघली हुई चीज साथ रखे और एक ठंडी को साथ रखे, दोनों ही माइल्ड हो जाएंगे। अपने साथ दूसरों को भी बांधने की जरूरत होती है। यही इस बिरु साबिर व राबितु, यही है वतवासो बिल हक की वतवासो बिल सब्र। लेकिन अगर कुछ लोग अपने आप को बालातर रख के इशारों कुर्बानी की जिम्मेदारी दूसरों के सर पर डालना चाहें, तो सारी जमात से ये खूबी जाती रहती है। यानी वही बात है, तुम करो तुम करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम्हारी। यानी जब दूसरों के कंधों पर रख दिया जाता है ना कि सारी कुर्बानियाँ तुम दो और इशार तुम करो, तो याद रखिए बाकी भी पीछे हो जाते हैं। खसूसियत से इस्लामी जमात के सरबराहों के लिए लाजिम है कि वह इस खूबी में आम जमात से पेश पेश रहें। यानी दूसरों को एनर्जी देने के लिए बास दफ़ा इंसान को वो भी काम करना पड़ता है जो आम हालात में ना भी करे तो गुजारा हो जाता है। ठीक है, अच्छा हमने कब भूख सही दीन के लिए? हम खाना खुलने के बाद क्या रवैया अख्तियार करते हैं अमूमन? ड्यूटी लगी हुई है, स्टॉल पे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों को सर्व कर रहे हैं और खाना खुल गया, हमारा क्या फ़र्ज़ होता है इस वक्त में? इंतज़ार कर लीजिए 1 घंटा 2 घंटे, नहीं 3 दिन नहीं भूखा कोई रखेगा आपको, और बाद में सारा आपको ही मिलना है। बात समझ गए? याद रखिए ये है असल में तरबियत का तरीका जो जंगों में अल्लाह के नबी ने कर दी। ये वो मजबूत ईंटें तैयार कर गए थे अल्लाह के नबी के, फिर दुनिया से भी अल्लाह उनको ले जाए तो भी पीछे से काम चलता रहा। कह लीजिए कि जो सहाबा का कोड ऑफ डिसिप्लिन था ना, इसने उम्मत की कश्ती को 1,000 साल तक डूबने नहीं दिया। डूबी आज भी नहीं है, बस डोल रही है क्योंकि लीडर ढीले हो गए। अल्लाह ताला हम सब का हिस्सा खैर में डाले, शर में ना डाले।